फिल्टर फिल्टर कर सकती हैं दवाइयाँ जो आपके किडनी को क्लीन कर सकती हैं।
डॉक्टर कुलदीप सिंह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सामान्य क्रम के डी होम्योपैथी पे, वॉक इन होम्योपैथिक क्लिनिक है। मगर अगर आप फोन करके इनके पास जाना चाहें तो फोन नंबर आपको मैं दे देता हूं 6478180055। इनकी लोकेशन जो है 20 मैरिटाइम्स बुलेवार्ड यूनिट नंबर 2 इन ब्रैम्पटन, क्वींस एंड एयरपोर्ट के कॉर्नर पर जो प्लाजा है उसी में मिलते हैं ये आप डॉक्टर साहब। और इनकी वेबसाइट है kdhomeopathics.com। के डी होम्योपैथी के जनाब कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप से जाके मुलाकात कीजिए आप, और इनसे कोई भी बीमारी हो आपको या आपके घर में किसी भी बीवी बच्चों को कोई बीमारी हो तो डोंट डिले इट, पहले आप चले जाएं ज़्यादा बेहतर है। और ये मत सोचें कि होम्योपैथी का काम जो है वो स्लो है, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि बहुत जल्दी में आप भी काम हो सकता है, डिपेंड करता बीमारी पे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू
जी। डॉक्टर साहब से मैंने आपकी बातचीत करवाई और साहब 7:01:04 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं, हम चलेंगे आपको कुछ टॉप ऑफ द आवर कमर्शियल्स की जाने, उसके फौरी बाद पड़ा में वापस आएंगे और हम बात कराएंगे आपकी अजीम मियाँ से। अजीम मियाँ न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और अजीम मियाँ से हम आपकी बात कराएंगे। 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है।
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca. Pakistan!
कंप्लीट होम फर्नीचर एप्लायंसेस की शानदार ग्रैंड ओपनिंग के बाद अभी भी उनके नो टैक्स इवेंट का फायदा उठा सकते हैं। घर के तमाम फर्नीचर और अप्लायंसेस के लिए लेटेस्ट स्टाइल्स, कलर्स, फैब्रिक और मटेरियल्स, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी फर्नीचर। तो याद रहे एक ही नाम, कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस। और हाँ, आपके घर की मुनासिबत से फर्नीचर की खरीदारी में नो कॉस्ट फ्री एडवाइस। तो आइए 547 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट इन ब्रैम्पटन, 9054463-905-244-4463।
बिजनेस रन करना मुश्किल है, सो प्रिंटर की प्रॉब्लम से इसे और मुश्किल क्यों बनाएं? फास्टर और स्मार्टर प्रिंट करें अपने नए HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर के साथ और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक, कनाडाज ओनली इंक सब्सक्रिप्शन सर्विस, जो इंक आपके घर पहुंचाए खत्म होने से पहले। आज ही खरीदें न्यू HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक स्टार्टिंग एट $399 a month। विजिट hp.ca या अपने नजदीकी HP रिटेलर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
G20 Canada Season 2 started in your city. दुनिया क्रिकेट के सुपरस्टार को देखिए एक्शन में। युवराज सिंह, शाहिद आफरीदी, क्रिस गेल, शुएब मलिक, ब्रैंडन मैकलम, डेरन समी, मोहम्मद हफीज, आंद्रे रसल, क्रिस लिन एंड मोर। जुलाई 25 टू अगस्त 11 एट CAA सेंटर ब्रैम्पटन। टिकट या सीजन पासेस के लिए विजिट gt20.ca। ग्लोबल T20 कनाडा, क्रिकेट कम्स होम।
आप सुन रहे हैं WTR 770 AM साज़ोबाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारे रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं और अब eawaz टीवी रोकू ऐप पर भी दस्तयाब है। आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री।
सोडी फर्नीचर कंपनी साड़ी कम्युनिटी दी सब तो पहले ते वड्डे शोरूम्स वाली कंपनी है जेडी के वधिया 100 सार फर्नीचर ते डेकोरेटिव आइटम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस ते बेच रहे हैं। 4 सालां ली बिना ब्याज ते फाइनेंसिंग दा भी प्रबंध। ब्रैम्पटन च 74 डेवन रोड जा 142 कैनेडी रोड साउथ ते पहुंचो। दोनों लोकेशंस दा इक्को ही नंबर 9058747171।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗਰੀਬਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 27 ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-450-9664। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का। दावत हो तो केटरिंग बहुत खूब करते हैं और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटीड नो हार्ट बर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसेस सागा में, बस कॉल कर लीजिए 9054058383 डेंटल कवरेज नहीं, मगर साहब आप परेशान मत होइएगा, डॉक्टर फियाज कुरैशी अब दो क्लिनिक से आपको सर्विस देते हैं। किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, तमाम डेंटल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ। रूट केनाल, ऑर्थोडॉन्टिक्स ट्रीटमेंट है, ब्रेसिस है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, तो बस सिर्फ एक ही नाम, डॉक्टर फियाज कुरैशी, मिसेस सागम और स्कारब्रो। आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट बनाइए। खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम और फीमेल डेंटिस्ट 9052325678 2325678। डॉक्टर फियाज कुरैशी
जी सर, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। मैं आरिफा मुजफ्फर, डॉक्टर गजाला जैद के रेफरेंस से दो न्यूज़ मैं आपके साथ लेके चलूँगी। डॉक्टर गजाला जैद फैमिली डेंटिस्ट हैं, स्कारब्रो में सीडब्रे क्लिनिक, सीडब्रे डेंटल क्लिनिक को रन करती हैं। डॉक्टर गजाला जैद सीडब्रे डेंटल क्लिनिक को रन करती हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है फॉर एनी डेंटल ट्रीटमेंट, लेटेस्ट डेंटिस्ट्री के लिए, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के लिए, आप डॉक्टर गजाला जैद से रब्ता कीजिए 416-945-1000 आप उनसे रابطہ कर सकते हैं डॉक्टर गजाला जैद से। और साहब, महंगाई दुनिया में कहाँ नहीं है, चलिए मैं आपको इंडिया में लेके चलती हूँ। मुझे पता है कि आप, जब मैं कनाडा से कंपेयर करती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कॉफ़ी की प्राइस जो है $1.84 इट इज़ गॉन टू $2.02, तो कोई एक भी शख्स नहीं बोला।
अच्छा
साहब, इंडिया में ना एक अदाकार हैं, वो अपने होटल में ठहरे हुए थे और उसके बाद वो जिम में गए तो उन्होंने भूख महसूस की। ये कोई फनकार भी आम सा नहीं है और 51 साल इनकी एज है, राहुल बॉस इनका नाम है। समाजी राबते की वेबसाइट पर इन्होंने ट्वीट किया, हाँ मैं वो ट्वीट आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा, यू हैव टू सी दिस टू बिलीव इट, Who said fruit was not harmful to you, your existence? Ask the wonderful folks at. ये राहुल ने बताया कि इस होटल में वो जिम में वर्जिश के लिए मौजूद थे, भूख लगने के बायस अपने कमरे में होटल में इन्होंने दो केले मंगवाए। कहते हैं, जिम में वर्जिश के बाद जब मैं कमरे में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया कि केलों को एक प्लेट में रखा हुआ था और उसके साथ बिल था और दो केले। आपको पता ही है कि यहाँ के केले तो फिर बड़े साइज के हैं, वहाँ पाकिस्तान इंडिया में केले का साइज ज़्यादा डिलीशियस होता है केला, मगर साइज छोटा होता है। तो कहते हैं कि जब मैंने अपने होटल के कमरे में पहुँचा तो मैंने जब इसके साथ बिल देखा तो प्लेट में केले पड़े हुए थे और उसके साथ एक बिल पड़ा था, दो केलों का बिल था, ₹442 दो किलो। नहीं यकीन आया ना आपको? दो बनाना ₹442 इसका, इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल था और जो केले थे उनको फ्रूट प्लेटर में रखा हुआ था। राहुल ने तनकीदी अंदाज में कहा कि ये लगता है केले कोई ज़्यादा ही अच्छे हैं। उन्होंने फिर ट्वीट भी किया और उसके साथ उन दो केलों की तस्वीर भी बना के भेजी, छोटे छोटे दो केले। आप सोचिए कि प्लेट के आम प्लेट जो होती है उसका दो तहाई भी नहीं कह सकते, यानी हाफ से कम ही, आधी प्लेट से कम ही साइज के दो केले थे जो पहुंचे 442 रुपए इन केलों का बिल बना। ज़ाहिर है होटल्स में, अच्छे होटल्स में जब आप रहते हैं तो आप एक कॉफ़ी का कप भी मंगवाते हैं तो वो भी तकरीबन 350 रुपए के करीब, 400 रुपए, 500 रुपए भी बिल बन सकता है। शाजिया जी हमारी बहुत प्यारी बहन है और माशाल्लाह शी इज़ अ जर्नलिस्ट। अभी जब हमने, बहुत शुक्रिया 4155, आई लव यू माई डियर बिकॉज यू ऑलवेज करेक्ट मी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु करेक्ट मी, मुझे अच्छा भी लगता है आपको एक्नॉलेज करना। आपने कहा फ़खर आलम, नहीं फ़ख्र आलम, बिल्कुल साहब फ़ख्र आलम, प्राइड ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन से दिस, प्राइड ऑफ द यूनिवर्स, द फैमिली इज़ प्राइड ऑफ द यूनिवर्स, ऑफकोर्स द फैमिली इज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। शाजिया जी कहती हैं कि जब अरशद समी और नौरीन समी खान की जब बात की, जो अदनान समी के पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि, शाजिया कहती हैं पाकिस्तान से दुबई में भी काम किया एज ए जर्नलिस्ट, कहती आई विजिटेड देम इन अबू धाबी और मिस्टर अरशद वाज पाकिस्तान एम्बेसडर, ही वाज माय मामूज फ्रेंड, माय फादर हु टुक मी देयर। और आई नो शाजिया जी आप तो उस वक्त का लिख रही हैं, मैं तो जब आज जब इसको पढ़ रही थी आई वॉज सैड कि इस मुल्क को इस्तेमाल किया जिन लोगों ने, इस्तेमाल करने के बाद इस मुल्क के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो कोई मुनासिब सलूक कोई मुनासिब नहीं है, बट वट एवर गोज अराउंड दैट डेफिनेटली कम्स अराउंड। वो जनरल रानी की फैमिली को जब मैंने पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ कि हम अपने आबाओ अजदाद से भी पहचाने जाते हैं और हमारे आबाओ अजदाद हमारे बच्चों से भी पहचाने जाया करते हैं। आज के प्रोग्राम में अजीम मियां साहब मेरा ख्याल है किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, वी आर डेफिनेटली ब्रिंगिंग हिम इन सम टाइम ऑन एयर विद अस, विल टेक लिटिल टाइम, ठीक है। मीनवाइल एक गीत की तरफ हम आपको लेकर ले जाना चाहते हैं, आप इस गीत को एंजॉय कीजिएगा। और उर्दन के आपको पता है टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बातचीत की है और टर्की मलेशिया मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर हाउस से इलामिये के मुताबिक तुर्की सदर जो तैयब उर्दोगान हैं उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हवाले से और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बेहतरी के हवाले से भी बातचीत की और वज़ीर आज़म इमरान खान इस साल तुर्की के दौरे में होने वाली गुफ्तगू का भी जायज़ा लिया। गुफ्तगू के हवाले से बयान किया गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात और करीबी तआवुन पर इत्मीनान का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने, यानी टर्किश प्रेसिडेंट ने भी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसके अगले सेशन में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के बारे में भी बात की। वज़ीर आज़म हाउस से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तुर्क सैयद तुर्क सदर जो हैं तैयब उर्दोगान उन्होंने पाकिस्तान तुर्की मलेशिया सैफरी की लायामल पर बातचीत भी की और अगले इकदाम पर तबादला ख्याल भी किया। चलिए साहब ये तो थी एक बातचीत। आज
अरफा जी अभी थोड़ी देर बाद हमारी हम बातचीत करवाएंगे जनाब अजीम मियाँ साहब से, वो भी इस ऐसे इलाके में न्यूयॉर्क के जहाँ बहुत शोर है, तो उन्होंने कहा कि लेट मी गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एंड देन मैं उनको कॉल करके रابطہ करेंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब इस वक्त अपने दुश्मन के हाथ में हैं और वो जो दुश्मन है वो मियाँ साहब की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। इन्होंने लाहौर में पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में जावेद हाशमी, अब आपको पता ही है कि ये पहले मुस्लिम लीग के साथ थे फिर पीटीआई के साथ आए, अब आई थिंक ही हैज़ जॉइंड नून अगेन, और सैनिटर परवेज रशीद और बाकी लोगों के साथ मौजूद थी। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बातचीत की और इस वक्त गवर्नमेंट तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से गुज़श्ता जुमेरात को मुलाकात हुई थी, जेल के सरकारी डॉक्टर ने कहा कि ब्लड शुगर ज्यादा है, जिस पर मियां साहब ने कहा कि आपने तो गुज़श्ता 10 दिनों में मेरी ब्लड शुगर चेक ही नहीं की। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और मैंने रिपोर्ट देखी तो 3 जुलाई की रिपोर्ट थी। नवाज शरीफ ने मरियम साहिबा से कहा कि मुझे इतनी ताखीर से रिपोर्ट क्यों दिखाई जा रही है। मरियम साहिबा ने यह भी कहा कि मैं बेटी हूं और मुझे किसी ने नहीं बताया मैं बेटी हूं, मेरा हक था कि आपने किसी और को नहीं बताया, मुजरिमाना गफलत है। سابق وزیراعظم کی صاحبزادی نے یہ بھی کہا کہ جیل آفس انچارج نواز شریف کی صحت پر رپورٹ مجھے نہیں دی, لیکن پنجاب حکومت کے کسی ہمدرد نے وہ رپورٹ مجھے فراہم کر دی. اب آپ امیجن کیجئے گا, آف کورس پارٹی فیورز ہیں, میں ایگری کرتی ہوں, مگر ٹریٹرز آپ دیکھیے, اس ملک میں بھی ایک شعبے کے بیچ میں دو بلڈ ریلیشنز جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے, اور جب آپ کام کرتے بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ 25 سال تک تو وہ خبر جو ہے وہ زبان زد عام نہیں ہوتی. مگر یہاں سے مجھے ایریا 51 کا ذکر آیا. میرا خیال ہے اب ٹیکنالوجی کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے بہت سی چیزوں کا. امریکہ کا ایریا ہے جو کہلاتا ہے ایریا 51. یہ ایریا 51 کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, اور بہت سے لوگوں کو اس جگہ کو وزٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور اس کے بارے میں کسی کو تاحال کوئی علم نہیں ہے. مگر سوشل میڈیا پہ گروپ آف پیپل اکٹھا ہوا, یہ تقریباً میرا خیال ہے 200,000 کے قریب, 200,000 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں.
ملین پیپل
میری محمد علی سے بات ہو رہی تھی. اچھا, ملین پیپل کے قریب اکٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے
سپٹمبر میں یہ سوچا ہے کہ سپٹمبر میں وہاں جایا جائے گا
ایریا 51.
مگر یو ایس ایئر فورس نے پہلے ہی منع کر دیا کہ ہم کسی کو بھی کتنی دور تک آنے نہیں دیں گے, اس کے
ایریا 51 میں انٹر نہیں ہونے دیں گے.
انٹر کو تو چھوڑے, مگر مائلز اینڈ مائلز اوے فرام ایریا 51.
مگر کیا ہوگا اب یہ سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, اور اس طرح سے لوگ اکٹھے ہوتے چلے جائیں, اور یہ بھی 1 million سے اور زیادہ تعداد بڑھے گی, تو کیا ہوگا؟
کچھ نہیں ہوگا. اگر اف یو ایس گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ یو ٹو سی اے پلیس, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو دیئر. یہ تو یو ایس لا کے اگینسٹ جا رہے ہیں نا آپ, تو وہ تو الاؤ ہی نہیں کریں گے آپ کو.
چلیے صاحب,
مائلز اینڈ مائلز اوے فرام دیٹ دے ول پٹ دی بیریکیڈز, جب تک ہم وہاں پر منع کر دیں گے.
میاں صاحب کو لے کے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے ایک ایکٹر جو ہیں, ان کا بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی کینسر ہو گیا ہے, اور امریکہ میں زیر علاج تھے, اور رشی کپور کو بھی کینسر ہوا, اور وہ بھی امریکہ میں زیر علاج تھے. ایک عرصے تک ان کی فیملی نے اس چیز کو ڈسکلوز ہی نہیں کیا, مگر اب ڈسکلوز ہوا. نیتو سنگھ کا ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا, آپ بھی سماعت فرمائیے. بہت ساری ان کی خوبصورت فلمیں ہم نے بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی, اور آپ اس کو سماعت فرمائیے.
ایک میں اور ایک تو, دونوں ملے اس طرح, اور جو تن من میں ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا.
آج بات ہو رہی ہے ایک ایسی اداکارہ کی جنہوں نے پہلے چائلڈ آرٹسٹ اور پھر ایک کامیاب ہیروئن کے طور پر بالی ووڈ میں نام کمایا, اور یہ تھی نیتو سنگھ یا نیتو کپور.
کسی پہ دل اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے, کسی پہ دل اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے,
بالی ووڈ کی انتہائی کامیاب ترین ہیروئنز میں سے ایک رہی ہیں. آج کے پروگرام میں آپ بی بی سی کے ساتھ نیتو سنگھ کی پرانی گفتگو کے کچھ حصے سن سکیں گے. '66 میں فلم 10 لاکھ اور 2 کلیوں جیسی فلموں میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کرنے والی نیتو سنگھ نے 1973 میں ہندی فلموں میں کام شروع کیا. تو یہ بتائیں کہ بالی ووڈ میں انٹری کیسے ہوئی؟
ایسا کوئی سوچا نہیں تھا کہ میں فلموں میں آؤں گی. ہم تو ایسے آئے تھے بامبے, میں دلی کی رہنے والی ہوں, تو ہم لوگ بامبے آئے شوٹنگ دیکھنے. شوٹنگ پہ گئے تو میں کافی شیطان تھی, کافی چلبلی تھی, تو کسی نے دیکھا, بولا ایک پکچر میں کام کرو. میں سورج میں میں نے کام کیا. اس کے بعد کسی نے بولا 10 لاکھ میں رول ہے. ایسے کسی نے دیکھا تو آگے آفر آئی. پھر جب 2 کلیاں میں آئے تو تب لوگوں نے بہت نوٹس کیا, کیونکہ وہ پوری مووی میرے پہ تھی. تو اس کے بعد تو پھر دیر واز نو لکنگ بیک. پھر ایک کے بعد ایک آنے لگی موویز کافی, مطلب پھر تو نام پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے, لوگ جاننے لگتے ہیں کہ یو نو اس کو لینا چاہیے. یا
دل ہے چلو دل میں بیٹھا کے تمہیں, تم سے ہی پیار کیا جا.
نیتو سنگھ نے اپنے دور کے تقریباً ہر بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا, چاہے وہ رشی کپور ہو, رندیر کپور یا پھر امیتابھ بچن, لیکن ان کی سب سے کامیاب آن سکرین جوڑی رشی کپور کے ساتھ رہی.
کھلم کھلا پیار کریں گے ہم دونوں, اس دنیا سے نہیں ڈریں گے ہم دونوں.
और असल जिंदगी में भी इन दोनों की जोड़ी कामयाब रही। तो शादी कैसे हुई आपकी?
ऋषि जी के साथ मेरी मुलाकात हुई जहरीला इंसान के सेट पे, चित्रदुर्ग में, साउथ में कोई जगह है चित्रदुर्ग, तो वहाँ पे मैं पहली बार मिली थी, मतलब शूटिंग के दौरान। वैसे पहली बार एक बार मुलाकात हो चुकी थी, बट शूटिंग पहली हमारी वहाँ हुई थी। वी वर गोइंग अराउंड, हम लोग जैसे डेट पे जाते थे, सब लोगों को पता था हम लोग का यू नो अफेयर चल रहा है, लेकिन शादी की कभी बात नहीं आई। उन लोगों ने सोचा कि 4 साल हो गए, अभी शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने जबरदस्ती हमारी एंगेजमेंट कराई। मेरे को तो पता भी नहीं था मेरी एंगेजमेंट है, ना मेरे पास कोई कपड़े तैयारी थे, कुछ नहीं। मैं दिल्ली गई, मेरे को बुलाया और वहाँ पे किसी की अंगूठी ली, मेरे हस्बैंड ने किसी की अंगूठी ली, हमने वहाँ पे हमको बैठा के हमारी एंगेजमेंट करा दी।
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
कपूर खानदान एक बड़ी फिल्मी फैमिली है और राज कपूर कामयाब तरीन फिल्म सास, जो बाद में नीतू सिंह के फादर इन लॉ बने, तो उनके साथ आपकी इक्वेशन कैसी थी?
वो इतने बड़े इंसान है, लेकिन डर थोड़ा तो था, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि वो आपको एकदम कंफर्टेबल कर देते थे, बातचीत इतना अच्छे से करते थे कि आपकी वो झिझक और जो भी परेशानी है वो एकदम से दूर हो जाती है उनके पास बैठने से। वो जैसे बात करते थे प्यार से, तो लगता ही नहीं था कि यू नो कि ऐसे, बाद में ऐसा लगता है मैं क्यों डर रही थी, ही सच अ नाइस पर्सन।
हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे,
हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, मगर इसको मैंने यहीं रोका क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ है, मुझे एहसास है कि वो बहुत कमिटेड भी हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे। मैं ना लॉलेसनेस की बात करती हूँ कि आज ही जब बात हो रही थी और एक बल्कि न्यूज़ भी थी कि ऑफकोर्स इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत की खूबसूरती, जमहूरियत का हुस्न है, मगर हमारा मीडिया कितना, हमारा जो जर्नलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और सहाफ़ी अच्छाई और बुराई दोनों के ऊपर नज़र रखता है। अजीम मियाँ साहब एक ज़िंदगी, जैसे शाजिया मंजूर की मैं बात करती हूँ, उन्होंने भी दश्त बीती है, इसी उम्र बीती है इसी दश्त की स्याही में, उन्होंने भी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार दी। हम जैसे तो हर वक्त हर लम्हा उनसे सीखते हैं। और मियाँ साहब जब अमेरिका में मौजूद थे, आपने हमारे ओवल ऑफिस में जाके जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने बातचीत भी की, थोड़ा उन्हीं के हाल नज़रों से हम इसको देखेंगे। मियाँ साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल ली। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं?
मियाँ साहब खबरों में तो बहुत कुछ पढ़ा, अगर आपसे बात हुई तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा हमें, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी अबाउट द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं मियाँ साहब बड़ी कंसर्न हूँ, आप बात कीजिएगा, मगर मैं अपने कंसर्न को पहले प्लेट में डाल दूँ कि मुझे लगता है कि लॉलेसनेस क्रिएट की जा रही है, हमको आपस में डिवाइड किया जा रहा है और दिस इज़ अ बिग कंसर्न। बल्कि आज हामिद मीर का एक इंटरव्यू भी है जिसको हमने शेयर भी किया, उन्होंने भी यही बात की। और अगर हम अपनी तारीख को भी उठा के देखते हैं और जब ब्रिटिशर्स ने बरे सगीर पाक को, हिंद को छोड़ा, वहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज रखी जो आज तक उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और बताइए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आए थे अमेरिका में, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमें कश्मीर का नाम सुनने को मिला, हालांकि कभी आज तक कश्मीर को डिस्कस नहीं किया गया किसी इस तरह के इवेंट में, तो आपकी ज़ुबानी सुनना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना अच्छा लगेगा।
ये बताएं कहाँ तक सुनोगे और फिर कहाँ तक सुनाऊं, क्योंकि शाजिया मंजूर का आपने जिक्र किया, दश्त
नहीं जी, ये नहीं, ये शाजिया जी हैं, शाजिया मंजूर भी इस वक्त टोरंटो में हैं, मगर ये शाजिया जी जर्नलिज्म से वाबस्ता, दुबई में भी रहीं, पाकिस्तान के टेलीविजन के साथ भी रहीं, अ वेरी स्ट्रांग जर्नलिस्ट, शी इज हियर इन टोरंटो। और जी जी, तो मगर मियाँ साहब हम सारे तो आपके सामने तिफले मकतब हैं।
नहीं आप बहुत बड़ी मेहरबानी, लेकिन अर्ज ये है कि असल किस्सा जो है, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि डिवाइड एंड रूल भी रहा, ये सब कुछ रहा। देखिए आप और हम जैसा जो कॉमन मैन है वो ये सब बात समझता भी है, कहता भी है, करता भी है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं कसे बाशत विदाउट एनी एक्सेप्शन जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी जब वो कुर्सी पर होते हैं उनकी समझ में ये क्यों नहीं आता कि ऐसी कुव्वतें हैं जो हम छोटी अक्वाम को जो है डिवाइड करना और रूल करने के तरीके और उसकी हिकमत की अमली पर काम करती हैं। वो ये बात आम आदमी की समझ में आती है, उसको तारीख का भी इदराक है, उसको मुस्तकबिल का भी इदराक है, मगर हमारे हुक्मरान चाहे कहीं के पढ़े लिखे हों, चाहे वो जामिया मिलिया से फारिग हों या वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से फारिग हों, उन सब का जो है जब कुर्सी पर होते हैं तो उनका रवैया यही होता है कि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन यही नहीं जानते कि डिवाइड एंड रूल करने वाली जो कुव्वतें हैं वो क्या चाहती हैं।
सही।
अब रहा जी, अब रहा इमरान अपना इमरान खान साहब का दौरा, तो शुरू से आखिर तक मुझे फॉलो करने का इत्तेफाक हुआ, करीब से मुशाहदे भी हुए और सारी चीजें देखी। इसमें भी अब यही है कि मैं चूंकि हकायक से अपने आप को करीब रखने की कोशिश करता हूँ, लिहाजा मैं शादियाने बजाने की बजाय ये देखता हूँ कि इस खुशी का या इस पॉम्प एंड शो के पीछे या इस गुब्बारे में जो हवा भरी है वो हीलियम है या आम हवा है, वो बारा उठेगा भी कि नहीं उठेगा। खान साहब का दौरा बड़ा खुशगवार रहा, खुशगवार कलमात के तबादले हुए और लगता ये था कि जिस तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो उनके वारे न्यारे हो गए हैं और वो जनाब बाकायदा बहुत ही ज्यादा मुतासर हैं इमरान खान साहब से, और हमारे हुक्मरानों का जो सिलसिला है वो यही होता है कि आई केम आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। तो ये जो रवैया है ये डिप्लोमेसी में नहीं चलता। कश्मीर का बिल्कुल जिक्र हुआ है लेकिन कश्मीर का जिक्र जिस तरह से हुआ है और जो उसकी अभी तक कैफियत अभी तक बना दी गई है दो दिन के अंदर, उस लिहाज से मुझे कहने की इजाजत दें कि हमारे हुक्मरान फिर ये शादियाना बजाना चाहते थे कि जनाब हमारा दौरा बड़ा कामयाब रहा, हमने तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी मुतासर कर डाला और हमने उनसे सब चीजें ले ली है। ऐसा नहीं, इसलिए कि खुशगवार वादे खुशगवार गुफ्तगू जो है ये किसी वक्त ट्रैप भी होती है। जैसे अभी आपने ये कहा कि बहुत सारे खदशात हैं, तो खदशात अपनी जगह हैं, ठीक है, आई कैन से कि इट्स ए गुड बिगनिंग। चलिए ये बात है कि तल्ख बात नहीं हुई बल्कि आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है, कुछ मामलात पर है, लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि अभी तक उन्होंने पीछे जो 14 साल में हमारे साथ ज्यादतियां हुई थी क्या उसकी उन्होंने माजरत कर ली है? जो हमारा पिछले 14-15 साल में नुकसान हुआ है कोई 100 अरब डॉलर का, हमने अपनी इकॉनमी और मुआशरत तबाह की है, क्या ट्रंप साहब ने ये वादा कर लिया कि हम आपको उसका 10वां हिस्सा भी आपको दे देंगे? देखिए ना कि होता यह है कि अगर पिछली बात पर खत्म करना है ज्यादती को जो है अगर हो गई है तो उसका तरीका यह है कि सिवाय खुशगवार बात करने के आपको ये चाहिए कि आपको उसका मदावा भी करें। क्या मदावा हुआ, क्या ट्रंप साहब ने जो इल्जाम आज से 6 महीने पहले हम पर लगाए थे क्या उन्होंने उस पर अफसोस का इजहार कर लिया है? खाली ये कह देना कि ये बेहतरीन एथलीट आए हैं और ये बड़े अच्छे लीडर हैं, ये इससे मेरा उनका इमरान खान साहब को तो सर भी होगी लेकिन मेरे मुल्क के जो दुख है उसका मदावा ये नहीं है।
मियाँ साहब आप मैं अगर आपकी इजाजत हो कि जहर दिमाग को तस्कीन देने के लिए हम सवाल भी बीच में करते हैं, मेरे लिए आप बहुत अहम हैं इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ। मगर देखिए मियाँ साहब हर चीज़ की आइस ब्रेकिंग होती है, मतलब हम एनालाइज कर रहे हैं, डू यू माइंड इफ आई कैन आस्क थिंग्स इन बिटवीन। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इज अ प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज़ नॉट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ नॉट प्रेजिडेंट ऑफ कैनेडा, ही इज़ वेरी वोकल मैन, कैनेडा के कुर्सियों पे बैठ के चाय पी के निकले थे एंड ही सेड उनके दिमाग में जो होता है इमीडिएटली अपने नेगेटिव बयान दे देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा के बारे में उन्होंने इतने गलत बयान दे दिए थे, मगर एक आइस ब्रेकिंग तो मियाँ साहब हुई है ना, अब अगर आप ये समझे कि पहली मुलाकात में मदावा भी हो जाएगा, मुआफ़ी भी हो जाएगी। ये कम्मा घाटा का एक वाक्या हुआ था जिस पे कितनी हुकूमतें कनाडा की गुजर गईं, ये अब पिछली गवर्नमेंट्स ने आके माफ़ी मांगी, आज तक कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। एबोरिजिनल्स के साथ उम्रों से ज्यादतियाँ होती चली आई, आज तक किसी ने माफ़ी नहीं थी मांगी। हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है जिसने अब आके तो माफी पुरानी गलतियों पे मांगना अलग बात है, मगर डू यू थिंक कि हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हुई, देयर इज अ होप?
मैंने अर्ज किया ना कि ये है कि इट्स अ गुड बिगनिंग, अल्लाह करे इसी सिमत में जो है आगे गुफ्तगू चले, इस हद तक मैं पूरी उम्मीद हूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं कभी पेसिमिस्ट नहीं होता, लेकिन यह है कि हकायक को सामने जो है वो नजरों में रखना बड़ा जरूरी होता है कि आखिर इसमें से अभी हमें मिलेगा क्या। तो जहां तक ये है कि अभी माजी को अगर आप फरामोश भी कर दें जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हालांकि मैंने अपना पहला सवाल जो ट्रंप से किया था उसमें उनसे मैंने यही कहा कि आप ये बताएं कि अफगानिस्तान की ये सब बात तो आप कर रहे हैं, वहां अपने लिए अमन की और अपने सफाइयों की सलामती की जो बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमने 100 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाया, तबाही भी थी, और उसके अलावा अब हमारे लोगों ने, हमारे इंसानों ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तानी शहरियों ने कुर्बानियां दी, ये सब कुछ होने के बावजूद आपने हमें ही इल्जाम के कटहरे में, मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा, मैंने कहा जी इल्जाम के कटहरे में आपने पाकिस्तानी को खड़ा किया, वाज दैट राइट? उसका कोई जवाब नहीं था। उसकी वजह यह है कि देखिए होता यही है कि घर से लेकर आलमी सतह तक जब आप किसी का अंडरस्टैंडिंग करने आते हैं, विजिट करने आते हैं, तो पहले से मामला तय होते हैं, वो जो जिन मुआहिदों पर हम दस्तखत करते हैं वो उसी दिन के नहीं होते, वो उससे पहले के होते हैं, तैयार किए जाते हैं, और तैयार करने के बाद फिर जनाब उन पर दस्तखत किए जाते हैं, उसमें बात होती है। तो उस लिहाज से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई सिवाय इसके कि यहाँ आना था, एक ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि उस ब्रेक थ्रू में एक और चीज भी है, वो ये है कि चाइना का सी टैग जो है अब उसकी कोई बात नहीं कर रहा, चाइना का सी पैक पसे मंजर से हट गया है। रजाक दाऊद साहब ने एक बयान, जो उनके वजीर हैं, उन्होंने जब से वो दिया कि हम दूसरे पार्टनर भी लाएंगे सी पैक में, उसके बाद से चीन का वो जो जोश व खरोश था वो ठंडा पड़ गया है। ये भी तो आप देखें कि इसमें आप क्विड प्रो को क्या ले रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका दौरा नाकाम रहा है, खुशगवार इब्तदा है, उन्होंने भी खुल के बात की है, इमरान खान साहब ने भी खुल के बात की है। आई एडमायर कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रेसिव है, मलेनिया जो है मलेनिया ने भी इस चीज़ को बड़ा पसंद किया है, पॉम पेन शो जिसको कहते हैं वो सारा बिल्कुल उनको मिला है, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो मेरे मुल्क के वजीर आजम कहते क्या है, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन मैं डिप्लोमेसी में सारी जिंदगी गुजारी है, डिप्लोमेटिकली अभी तक हमें कुछ नहीं मिला।
बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। कश्मीर का मामला पहली दफ़ा हाईलाइट हुआ आज, बल्कि मैं एक बयान पढ़ रही थी जिसमें भारत के वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह ने, मैं इसका आपसे बाद में जिक्र करती हूँ, उन्होंने अपना बयान दे दिया है। हालांकि कारगिल का जो वाकया हुआ था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना पाकिस्तान की जीत हुई ना इंडिया की जीत हुई। बैरूनी ममालिक को इन्वॉल्व करने के बाद जंग बंदी हुई थी, यानी वो कोट एंड कोट्स में कि भारतीय फौज और फिजाइया अस्क्रियत पसंदों की बैन अल-अक़वामी तावन के साथ इनको वापस जाने पे मजबूर करने में इंडिया कामयाब हुआ था। बहरहाल उसको हम डिस्कस नहीं करते। कश्मीर का मामला इंडिया की जितनी प्रेस है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है आग लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लफ्ज कह दिया कि मुझे नरेंद्र मोदी ने जापान में सालसी बनने का कहा, और इसका भी क्रेडिट आपको जाता है कि आपने कश्मीर के मामले को हाईलाइट किया। जनाब यू आर आर रिप्रेजेंटेटिव देयर इन अमेरिका एंड ऑल क्रेडिट गोज टू जनाब अजीम मियां साहब। तो इंडिया में आग लगी हुई है, बल्कि बाहर इंडियन जो पार्लियामेंट है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया गया इंडिया का मीडिया में कि कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज़ें बुलंद ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे इन्वॉल्व होने का या सालसी बनने के बारे में कहा था, तो कश्मीर को इन माय लाइफ वक्त का फिरौन है अमेरिका, फर्स्ट टाइम कश्मीर का जिक्र हुआ है उस प्लेटफॉर्म पे, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए इसमें अब वो है कि मैं अपनी खुद नुमाई और अपने आप को किसी शेखी के जिम्मे में नहीं लाना चाहता, लेकिन हुआ क्या है कि इसकी कोई गुंजाइश उस मुलाकात में नहीं थी। सदर ट्रंप जो है वो गुफ्तगु कर रहे थे कि भी अफगानिस्तान में जो है इतनी हिलाकतें हो गई हैं और अगर मैं चाहता तो मैं एक दिन में जंग जीत सकता था, लेकिन मैंने कोई बम से नहीं उन्हें उड़ाया, वरना मैं एक बम से उनको उड़ा सकता था और इतनी हिलाकतें हुई हैं, इतनी तबाही है, तो लिहाजा मैं अफगानिस्तान में अमन चाहता हूँ, स्टेबिलिटी चाहता हूँ और वहाँ पर इंसानों को जो है हिफाजत चाहता हूँ। तो एकदम मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्या अफगानिस्तान में अगर अमन आ जाएगा तो उसके बाद में पूरे खत्ते में अमन आएगा? तो आगे से जवाब मुझे मिला कि नहीं, तो मैंने फौरी तौर से उसको इंटरप्ट किया और मैंने सदर ट्रंप से सवाल करने के बजाय मैंने इमरान खान साहब के कंधे पे सवाल रखा और उनको मतलब ये कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये देखें कि कश्मीर भी तो वहाँ एक स्पॉट है जहाँ इंसानियत जो है उस पर जुल्म हो रहे हैं, जहाँ तबाही है, जिसके लिए ये मैंने खासतौर से कहा, मैंने कहा जी अमरीका ने शुरू में अक्वाम मुतहदा की उस करारदाद के हक में वोट दिया था जिसमें कश्मीरियों के हक के खुद इख्तियारी को तस्लीम किया गया था, आज अमरीका की पॉलिसी बदल चुकी है, लिहाजा वजीर आजम साहब आप मुझे ये बताएं कि क्या कश्मीर का मसला आप बात करेंगे? और साथ ही उन्होंने जब सदर ट्रंप ने कहा यस ही गॉट योर क्वेश्चन, आई सेड नाउ मिस्टर प्रेसिडेंट यू आल्सो आई नीड योर आंसर एज वेल because America had done this in favor and secondly you are an ally of India, so how would you know can't you play a role and intervene into the matter and resolve it, otherwise there is another spot of Kashmir which can bring a war to that country again, to those countries again. So wo fir baat samajh gaye, to usme matlab hai ki jab Trump ki bari aayi तो उन्होंने जनाब अली ये इंकशाफ कर दिया कि मोदी साहब ने जो है वो वहां पर जापान में मुझसे ये बात की थी इस तरह से, और फिर उसके बाद जो है सितारों में रोशनियां रही, क्योंकि इंडिया में कमोशन हो गया, नई दिल्ली में कमोशन हो गया, कोलंबो में कमोशन हो गया, ढाका में कमोशन हो गया और इस्लामाबाद में शादियाने बजने लगे कि आज हमने कश्मीर का किया। ये इमरान खान साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये उनका नहीं, ये एक फकीर आजिज सहाफी का कारनामा है, उसी वही पाकिस्तानी सहाफी जिसको बाज़ दफा इमरान खान साहब जो है ब्लैक मेलर कहते हैं, ये उसी पाकिस्तानी सहाफियों का, मेरा अपना जाति नहीं, मैं तो कहता हूँ सारे पाकिस्तान की जो सहाफत है ये उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका क्रेडिट है कि कहीं जहाँ पर इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या मुशर्रफ साहब हो, उनके वज़रा जो हैं जहाँ उनकी टांगे काम की हो, वहां पर एक आजिज पाकिस्तानी खड़ा होकर जब ये सवाल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में करता है उसका जवाब में ये मिला है। नतीजा ये था कि शाम को जो है हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब शादियाने इस तरह से बजा रहे थे कि जैसे उन्होंने कोई किला फतह किया है, हालांकि ये किला जो फतह किया है ये उन्हीं गरीब उसी किसी एक आजिज सहाफी का फतह किया हुआ है जिसे आप पाकिस्तानी सहाफत का हिस्सा कहकर ट्रैश में डाल देते।
ये वो सहाफ़ी है जिसका नाम है अजीम मियाँ, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था। मियाँ साहब मुझे आज हमारे यहाँ पे मंजर भाई पाकिस्तान कराची से ताल्लुक है उनका और रोज़ाना का एक अखबार भी निकालते रहे, मुझे आज उन्होंने बताया कि वहाँ पर पाबंदी थी डॉक्टर आफिया से मुतल्लिक सवाल पूछने, इज़ दैट राइट?
नहीं, वो खातून जो है वो मेरे बिल्कुल पास करनी थी, नवाए वक्त में वो कॉलम लिखती हैं कभी, और वो जो है मेरे पास खड़ी थी, मुझसे कह रही थी अब ऐसे वक्त में माहौल में कशीदा होता है, रश होता है, तो उसके अंदर जो है वो आपको या आप ये देखें कि वो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने क्या सवाल करना है, मैंने कहा बीबी इस वक्त जो है मैं गालिबन सदर ट्रंप के इतना करीब था कि अगर चाहता तो मैं उनको छू सकता था या हाथ मिला सकता,
तो पकड़ लेना था, छू के देखना तो था,
पकड़ने से कोई फायदा नहीं होता। मैं उनसे 1968 में बाकायदा आधे घंटे की गुफ्तगू करने का मुझे एजाज है, और ये आरिफा आज पहली दफा नहीं है कि व्हाइट हाउस में मैंने ये किया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओबामा साहब के दौर में, बिल क्लिंटन के दौर में, सदर बुश जूनियर के दौर में और उसके अलावा रेगन के दौर में, यही इसी किस्म नौयत के सवालात और इसी किस्म के तारीखी जवाबात जो है हासिल करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं कर चुका हूँ। लिहाजा वो व्हाइट हाउस की जो एक हैबत तारी होती है लोगों पर, वो मुझ पर नहीं है, तो मैं खुश रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि देखिए, उस खातून ने वहां से जब वो हट गई मेरे पास से, क्योंकि मैं फोकस्ड आदमी हूँ, मैं फोकस में था, मैंने उन्हें साफ कहा कि इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, या पहले कर सकता था या बाद में करूंगा, तो वो वहां से हटके सामने चली गई। उन्होंने जब इस वक्त ये कहा आफिया सिद्दीकी का मामला, तो हमारे वजीर आजम साहब ने कोई ऐसा इशारा दिया जिससे ये पता चला कि वो इमरान खान साहब इस सवाल को पसंद नहीं करते। फिर आबिल आखिर उन्होंने ये जवाब दिया, यस वी विल डिस्कस इट, उससे ज्यादा वो नहीं गए, और उसकी वजह गालिबन यही होगी कि आपस में कोई इनकी अपना दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा इशू आपने रेज करना है कौन सा नहीं। हालांकि शकील आफरीदी का मसला भी जो है वो भी रेज किया गया है, और बाद में पता ये चला कि हम लोग इस बात के लिए तैयार है कि शकील आफरीदी जो है वो दे दें और उसकी जगह आफिया ले लें, लेकिन आफिया गालिबन अब खुद भी नहीं आना चाहती है। आफिया के किस्से में भी ये है कि आफिया सिद्दीकी का पूरा केस जो न्यूयॉर्क में चला है मैंने अटेंड भी किया है, मैं उसके अंदरूनी और बैरूनी मामला से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लिहाजा उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो हमारी बहन है, और लेकिन जहाँ तक वो है उन्होंने खुद खत एक लिख के दिया हुआ है जो मैंने पढ़ा है कि मैंने उन्होंने कोई वो अपील नहीं करना चाहती, वो कोई बात नहीं करना चाहती इस मामले से, उन्होंने अपना मामला जो है ये अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और वो यहाँ के अमरीका के निज़ाम इंसाफ पर कोई यकीन नहीं रखती। लिहाजा ये कहना कि जी वो इस मामले में किसी किस्म की वो कोई अपील चाहती हैं या वतन वापस जाना चाहती हैं, मुझे इस बारे में शुबा है।
अजीम मियाँ साहब मेरे साथ हैं। मियाँ साहब एक और चीज़ जो क्योंकि ये जो कश्मीर का मामला उठा है उसके बाद मैं आई विल गो टू स्क्वायर वन अगेन, मतलब क्रेडिट गोज़ टू यू, यू पुट दैट क्वेश्चन, और उसके बाद जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और उसके बाद जैसा आप कहते हैं चिरागों में रोशनी ना रही। आज इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया है और उन्होंने वो ये उन बकौल उनके उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ना तो मुकम्मल जंग ना महदूद जंग लड़ सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ दरपर्दा जंग शुरू कर रखी है। ये दरपर्दा जंग कौन सी उन्होंने कहा, ये जो अमेरिका गए और बातचीत हुई है और कश्मीर का जिक्र आया इसका जिक्र कर रहे हैं?
ये मैंने उसी रोज थोड़ी देर बाद इंडियन के साथी मेरे पास आए, वो गालिबन समझे कि मैं इंडियन हूँ, दोनों ने तो ये शिकायत की कि देखिए आपने इंडियन होकर आपने इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर दिए ये सवाल पूछकर। तो मैं मसलहतन ये देखना चाहता था कि ये किस हद तक मुझसे क्या तवक्को करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे इनके सीनियर और वाइट हाउस में मुतायन साहबी हैं वो मुझे जानते हैं, उन्होंने जनाब ये किया कि वो आए और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपने आज तो हमारे उसमें कमोशन तारी कर दिया है। तो मैंने कहा बात सुनिए, आप इस्लामाबाद में कई कमोशन अपने सवाल से तारी करते रहते हैं, तो आज अगर हमने तारी कर दिया तो इसको भी आप बर्दाश्त कर लीजिए। तो बात यह है कि वो देखिए अब सदर ट्रंप जो है उनका ये मसला तनाजा हो गया है, खड़ा हो गया है, उन्होंने बिल्कुल कश्मीर पे ये है कि जो बात कही है वो हमें सूट करती है, हमारे लिए बड़ी मुनासिब है, हमारे मौकफ की तायीद करती है, और वो सालसी के लिए भी वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तैयार है तो हम तैयार हैं, लेकिन मोदी साहब जो है वहाँ कोई भारत में कोई हुकूमत ऐसी नहीं है कि जो इस किस्म की मतलब है कि इस किस्म की तजवीज़ की तरफ जा भी सके, लिहाजा फौरी तौर से उसकी जो है वो डिनाइल की गई है, और डिनाइल करने के अलावा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देख रही हैं कि लोकसभा में भी हंगामा हुआ है, मोदी साहब ने फौरी तौर से जो है वो ये इस बात की तरदीद की है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा आप ये देखिए कि उन्होंने इस बात को जो है वो आगे कहने की कोशिश की है कि हम इस बात को नहीं मानते। नतीजा उसका यह है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को एक मतलब कि मसला खड़ा हो गया है कि वो किस तरह से इस मामले से डील करे, बल्कि एक या दो जो है वो आपके ब्रीफिंग थी इसी मामले पे
इमरान खान साहब वो जो स्टेट डिपार्टमेंट को वो कैंसिल करनी इसलिए पड़ी कि अब वो उनको अपना एक मौकफ लाना पड़ रहा है कि ये उन्होंने क्या कहा है, और नतीजा उसका यह है कि उनके सदर के सदर ट्रंप के तर्जुमान ने ये कहा कि जो बात उन्होंने कही है वो दिल से कही है, क्योंकि ट्रंप जो है उनका मिजाज ये है कि जब वो कोई बात कहते हैं तो वो फिर उस पर कायम भी रहने की कोशिश करते हैं, अड़ जाते हैं, तो अब वो भी अड़ गए हैं। लिहाजा एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, और वो ये चाहते हैं कि इस बयान का कोई तोड़ हो। एस्टैब्लिशमेंट में जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसमें इस तजवीज की भी मुखालफत हो रही है, लेकिन वो क्योंकि सदर अमेरिका है लिहाजा इतनी खुलकर ना उसकी तजवीज दे सकती है, तो ये बयान जो है इसके आगे बढ़ने की मुझे गुंजाइश कम नजर आती है कि ट्रंप साहब जो ये कर पाएंगे। ट्रंप साहब अभी आने वाले दिनों में अपनी कैंपेन करेंगे, अपनी सदारती कैंपेन दूसरी मुद्दत के लिए करेंगे, और उसके अंदर ये मामला जो है हो जाएगा। हमारा ये जरूर है कि व्हाइट हाउस के अंदर इसका जिक्र आ गया, ये मसला मतलब है कि उठा दिया गया और उस पर जो है उनका रद्द अमल आ गया, हमारे मौकफ को बड़ी सक्रियत पहुंची है। लेकिन जहां अमलिया बल्कि रावन रैफेल और फ्रीसा शेफर ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अम्बेसिडोरियल असाइनमेंट्स में भी रहे हैं और आला ओहदों पर अमेरिका में वहाँ पाकिस्तान में मुतयन रहे हैं। दोनों खवातीन से मेरी बात हुई है, उसके अलावा कुछ अमरीकी जो अहदेदार हैं इस वक्त उनसे बात हुई है, तो वहाँ से यही कहते हैं कि सदर ने कह दिया है, लेकिन ये अभी इस वक्त बड़ा टाइम लगेगा।
अजीम मियां साहब मेरे साथ हैं। मियां साहब अगर हम अमेरिकन कांग्रेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मिशेल के नाम से एक रेडियो प्रोग्राम चला करता था जो कि पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट प्रमोट कर रहा था या अगेंस्ट पाकिस्तान चीज़ें पैदा कर रहा था लोगों में, और अगर हम पाकिस्तान की एड के लिहाज से बात करते हैं तो एड उन्होंने दी, हमारी सड़कों को इस्तेमाल किया, एड दी, दैट्स व्हाट इट इज़। मगर कांग्रेस ने बड़ा रोल प्ले किया था कि भाई पाकिस्तान को ये रकम जो है कम हो जानी चाहिए, हमें और चीज़ों के लिहाज से। इस इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की विजिट के बाद यू स्टेड एक्स्ट्रा टाइम इन वॉशिंगटन, और उस मुलाकात के बाद यू हैड अ चांस मीटिंग विद डिफरेंट सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से आपकी मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की विजिट के बारे में उन सेनेटर्स का क्या रवैया था या क्या बयान था?
देखिए वो खुश वो देखिए उसमें सेनेटर एक जो है वॉन होवन जो यहाँ सेनेटर है वो कराची में पैदा हुए थे, जब उनके वालिद वहाँ एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पर थे तो वहीं पैदा हुए थे, वहीं उनकी थोड़ी सी स्कूलिंग हुई है, तो वो एक सिर्फ सेनेटर थे, बाकी सारे कांग्रेसमैन आए हुए थे। उन सेनेटर से भी मेरी बात हुई और कांग्रेसमैन से भी बात हुई, शीला जैक्सन से मेरी बात हुई, उसके अलावा ब्रैड शर्मन जो है उनसे बात हुई। अब ब्रैड शर्मन वो डेमोक्रेट हैं जो पाकिस्तान कांग्रेस के मेंबर हैं, लेकिन ट्रंप की इस बयान की वो सख्त मुखालफत कर रहे हैं कि ट्रंप ने ये बयान क्यों दिया कि कश्मीर के मामले में वो सालसी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें जो है एहतियात के साथ हमें जांचने की जरूरत है, खुश होने की ये जरूरत है कि हम अपने मौकफ को आगे बढ़ाएं। किसी तरह से ये जो कश्मीर के मसले पर जो कुछ उन्होंने कहा इसकी थोड़ी बहुत भी अगर प्रोग्रेस हम करने के लिए काम कर लेते हैं तो अच्छी बात है, होना चाहिए, दबाव रखना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो है फतह के शाजाने बजाने जो है वो कोई इतना अच्छा मुनासिब इसलिए नहीं कि इसका नतीजा कुछ नहीं है अभी। इट्स ओनली वर्ड्स एंड द वर्ड्स हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एन एक्शन। वो एक्शन मैं देखना चाहता हूँ कि एक्शन कहाँ है। एक्शन आने में अभी जो है मुझे लगा कि अपना शुबा है कि शायद एक्शन जो है आने में मुद्दत लगे या ये एक्शन जो है हालात की और वाकयात की नजर होकर सिर्फ बयान रह जाएंगे।
सही। अजीम मियां साहब हमारे साथ अमेरिका से। मियां साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप शामिल हुए। जाहिर है पाकिस्तान अपनी बड़ी कीमत भी चुका रहा है, मगर आज मैं इतना कहूंगी कि अगर हम पाकिस्तान की अगर दगरगूं सूरत हाल है तो दिस इज़ नॉट एक दिन का मामला नहीं है। पिछली हुकूमतों ने ये तह दर तह चीज़ें बिछती चली जा रही थी जिसके नतीजे में ये सब कुछ है। आप जैसे लोग यकीनन हमारे पॉजिटिव्स भी बताते हैं, स्ट्रेंथ्स भी बताते हैं, वीकनेसेस भी बताते हैं। आज इंग्लैंड की तरफ आपको दो मिनट के लिए लेके चलूं क्योंकि मुझे पता है पूरी दुनिया पे आपकी नज़र है।
वो देखिए जी वो जो है वो कॉलोनियल मास्टर्स हैं हमारे, उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए।
कि वो कोई नया मतलब है कि कोई चीज अपने मतलब है कि उसमें तो नहीं लेकर कमान में तो नहीं लेकर बैठे हमारे लिए, मालकान रहे हैं, कॉलोनियल रहे हैं, नौबादियाती निजाम देकर आए हैं, सब्बर सगीर को ट्रेन देकर आए हैं और बहुत कुछ दे गए, तालीमी निजाम देकर आए हैं जिस पर हम आज तक, हत्या के पुलिस का जो है एक्ट है 1935 का जो एक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के आईन की और कवानीन की बुनियाद भी है। तो ऐसी बात नहीं जी, मालकान की तरफ जो है साबिक हो गुमरानों की तरफ नजर रखनी चाहिए, तारीख जो है दोहराती रहती है अपने आप को कभी कभी।
मियाँ साहब, बोरिस जॉनसन अमेरिका इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और बोरिस जॉनसन की अगर देखा जाए तो ये तो सल्तनत उस्मानिया में भी इनकी ख़ानदान ने काम किया, पॉलिटिक्स देर से इनका हिस्सा थी और बुनियादी तौर पे मुसलमान थे। इनकी नानी जो थी उनकी वजह से, क्योंकि उसकी वालदा की डेथ हो गई थी और फिर नानी ने बच्चों के चेंज नाम चेंज किए और गोरों के नाम आ गए, मगर इनमें हेरिटेज अभी भी वो मुसलमानों की है। कहा जा रहा है कि जो स्कॉटलैंड है वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहता है, इंग्लैंड अलग होना चाहता है, तो अगर बरतानिया टूटा तो इसकी जिम्मेदारी बोरिस जॉनसन पे जाएगी इनडायरेक्टली, वो मुस्लिम को भी उसका ब्लेम किया जाएगा। तो यहाँ मैं आपकी राय ले सकती हूँ?
जी हाँ, बोरिस जॉनसन जो है देखिए ये सल्तनत उस्मानिया के खूनी रिश्ते तो इनके मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप तारीख में इनका किरदार देखें तो बोरिस जॉनसन और उनकी फैमिली, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ही काम किया है और ब्रिटिशों का साथ दिया है, इसीलिए वो फिर इंग्लैंड में भी आके आबाद भी हुए। और तो और उस जमाने में जबकि मजहब जो है बड़ा एक बुनियादी और कलीदी मतलब के मसला समझा जाता था, इन्होंने कन्वर्जन किया और ये मतलब के अपना ये क्रिश्चियन हो गए।
जिंदाबाद। आपने बड़ी कमाल की चीज की, यानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के खिलाफ थे इनके वो जो नाना थे, परनाना थे, और तो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ही इन्होंने काम किया, तो इसका मतलब है। मगर अब कहा जाता है कि अगर इंग्लैंड टूटा, अगर टूटा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड ने अलग होना मांगा और वो अलग हो गया, तो इसका असर कैसे पड़ेगा?
इसका असर वही पड़ेगा जब हमारा मुल्क जो है मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन के टूटा और मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाया, तो इसका इस मुल्क को तोड़ने का जो इल्जाम है उसमें कोई गैर मजहब का आदमी शामिल नहीं था, उसमें दोनों तरफ से मुसलमान थे, बल्कि तीनों तरफ से मुसलमान थे। हम भारत को कहते हैं, हमने भारत ने जारियत जरूर की थी, लेकिन उससे पहले की तमाम गलतियां हमारे मतलब के मुस्लिम जर्नैलों की भी थी, मुस्लिम सियासी लीडरों की भी थी, उसमें शेख मुजीब की भी गलतियां थी और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की भी गलतियां थी। तो ये वहां पर यानी आप ये देखें कि वो मुल्क जिस तरह से टूटा है उसमें सब के सब मुसलमानों की गलतियां जो है उसकी बुनियाद पर पड़ोसी दुश्मन भारत ने जो है वो उसको उसके सल्तनत का शिराजा बखेरा था। तो जो जहाँ हमारी जुबान वहाँ चुप रहती है वहाँ दूसरी जगह भी चुप रहना पड़ता है, इसलिए कि वहाँ तो फिर मजहब का मामला भी आ गया, तब्दीली मजहब का मामला भी आ गया, बगावत का मामला भी आ गया। तो ये चीजें जो है ये तारीख के अंदर ऐसी हैं कि हमें सबक सीखना चाहिए।
आपसे बात करते हुए मुझे बिल्कुल ऐसे एहसास होता है कि आप एक बहुत ऊंची चट्टान पे खड़े हैं जहाँ से आप ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं। मियाँ साहब, दुनिया किस नहज पे चल रही है? ये जो नया एक ब्लॉक बनता जा रहा है, इंग्लैंड की जो सूरत हाल है, ईरान को जैसे कॉर्नर किया जा रहा है, पाकिस्तान को अल्टीमेटली, अमेरिका के लिए पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोंट वॉन्ट इंडिया टू बी अ सुपर पावर और पाकिस्तान के ऊपर हावी ना हो, क्योंकि वो तो फिर इंग्लैंड अमेरिका के भी सामने खड़ा हो जाएगा। तो क्या लगता है कि हम वी आर गेटिंग इनटू अनदर वॉर, वर्ल्ड वॉर, और व्हाट इट इज?
वी आर बीइंग ड्रैग्ड इनटू अ मेस। और मेस ये है कि अगर आप अफगानिस्तान जो है अमेरिका की मर्जी के मुताबिक भी हल कर लें, इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये कहा था कि 14 साल पीछे जो हमें आपने सलूक किया है उसका तो कोई मदावा नहीं है, लेकिन आगे जहां आप हमें ले जाना चाह रहे हैं
वहां ले जाने के बाद फिर वही सलूक हुआ, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो सलूक नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि देखिए, अफगानिस्तान में अगर हम मामलात को तय भी कर लेते हैं और जिस तरह अमरीका चाहता है वैसे तय कर लें, जिसका मुझे अंदेशा है कि नहीं हो सकेगा, उसकी वजह यह है कि देखिए, तालिबान जो है वो नजरियाती लोग हैं, वो खाली अगर पावर के लिए अगर लड़ रहे होते तो बहुत पहले वो दो चार सूबों में पावर लेकर बैठ गए होते। वो पावर की तो बात नहीं कर रहे, मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं, तो वो इमरान खान को क्यों मानेंगे? किस बात के लिए वो माने? कि सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है और पाकिस्तान के वजीर आजम है? इमरान खान अपने आप को तालिबान से कैसे कबूल कराएंगे? देखिए, एक नजरियाती जो लोग होते हैं ना, वो कबूल नजरियात के सामने ये नहीं कि मतलब है कि इस चीज को नहीं देखते कि उनकी ताकत कितनी है। वो अल्टीमेट पूरे अफगानिस्तान में ताकत है। वो कहते हैं जी अमेरिकन निकल जाए, हम जाने, हम भी अफगानी हैं, वो भी अफगानी है, हम जाने और वो जाने, आप इसमें यहाँ से अपने आराम से लेकर निकल जाए अपने अफवाज को, आप गैर मुल्की हैं, आपकी मुदाखलत हुई है। अब ये है कि अगर उसके लिए, जब वो खुद बराह रास्त अमरीका की इस बात को नहीं माने, तो इमरान खान इस बात को कैसे मनवा लेंगे ए नजरियाती ग्रुप से, जो इस्लामी जिहाद और इस्लाम के बदले की तालीमात को बिल्कुल वो ऐसे नाफिज करना चाहता है कि जिसमें जिसकी गुंजाइश जो है आज के दौर में कम है, लेकिन वो उससे अड़े हुए हैं, कुर्बानियां वो दे रहे हैं, मर रहे हैं, तबाह भी हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वो किस तरह से इमरान खान को एक मॉडरेटर या सालिस आपको मान लेंगे? क्या सिर्फ इसलिए कि उनको चार सूबों में आप हुकूमत दे दें? वो चार सूबों की हुकूमत नहीं, वो पूरे अफगानिस्तान की हुकूमत मांगते हैं, वो पूरे अफगानिस्तान का इख्तदार हासिल करना चाहते हैं। तो मुश्किलात हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि मुश्किलात हैं, बहुत सारे इम्पॉसिबल मिशन जो है ना, अमेरिकन जो है, देखिए अमेरिकन, हम तो खाली इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इसके तनाजुर में अपनी पॉलिसियां बनाते हैं। अमेरिका अपनी पॉलिसियां आलमी तनाजुर में बनाता है। जब वो आलमी तनाजुर में बनाता है और लॉन्ग टर्म बनाता है, हमारे यहाँ तो 6 महीने की पॉलिसी होती है। अब नवाज शरीफ ने यह काम किया कि फौरन शोर उठा दिया कि जैसे पाक चीन जो है ये रोड बनने से पता नहीं क्या इनकलाब आ जाएगा और क्या खुशहाली हो जाएगी और दूध और शहद की नहरें बह निकलेंगी। भाई पहले बना तो लें, आप बना लें, जिस वक्त उन नहरों में शहद आ जाए तो आपके ये जनाब ये शहद है। इसी तरह से अब जो है इन्होंने ये अपने आप को पेश तो किया है, देखना ये है कि अफगानी जो है वो इनको काबिल कबूल समझते हैं या नहीं। अपने आप को इमरान खान काबिल करवा देंगे, महज इसलिए कि एक जमाने में उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री जो है, फौज कशी जो है, या लड़ाई जंग जो है, वो मसाइल का हल नहीं, डायलॉग होना चाहिए। ये बात तो मुशर्रफ लड़ने के साथ साथ भी कह रहा था कि जी डायलॉग होना चाहिए, उससे पहले भी यही कहा गया, बेनजीर भी यही कहती थी कि डायलॉग, बल्कि जनरल नसीरुल्लाह बाबर जो है वो तो ये कहते थे कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, हम इनको बिठा लेंगे।
मियां साहब क्विकली 2-3 कॉल्स ले लें।
जी बिल्कुल ले लें जनाब, गर्म कॉल अगर जितनी गर्म होगी मुझे अच्छा लगेगा। 4416620178
मियां साहब का बहुत शुक्रिया। मियां साहब शामिल हुए, पहली कॉल को हम एयर करते हैं। स्टूडियो का नंबर 4166201778। आपकी कॉल्स यकीनन हम पहली कॉल को ऑन एयर करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद बात कर रहा हूँ। आपसे अरमा जी, मेरे इनसे पहले भी सवाल पूछा था तो मैं भी यही बातें सुन रहा था कि बहुत अच्छी बातें हैं सारी अच्छी, लेकिन जब ये कह रहे थे कि हमें मिला क्या है और जो इमरान खान के विजिट के उसपे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं कि कोई हमें कुछ देगा, जबकि वो सुपर पावर है, उसकी मर्जी है। कि जैसे हम अपने अब्बा से बोलते थे कि जी हमें पैसे चाहिए, अब उनकी मर्जी है, वो चाहे हमें चार आने दे दें या रुपया दे दें, तो ये मतलब एक्सपेक्टेशन हम कैसे रख सकते हैं? वो उनकी मर्जी है। एक सुपर पावर से आप जब बात करने जाते हैं, अभी आप रियलाइज तो करना चाहिए ना कि हमारी हम कहाँ खड़े हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो ये पूछ रहे थे कि मतलब हम किस तरह से हमें क्या?
आपका सवाल बिल्कुल बजा है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए। और इमरान खान एक तरफ तो यही हमारे भाई, ये नहीं, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि पिछले आप सारे दौरे जो है, नवाज शरीफ का दौरा हो, बेनजीर का हो, मुशर्रफ का हो, जियाउल्लाह का हो, किसी दौरे को उठा के देख रहे हैं, यही इख्तिताम पर, दौरे के इख्तिताम पर यही ढोल बजे कि हमने फतह कर लिया, हम जीत कर आए हैं, दौरा इंतहाई कामयाब रहा है और दौरे में वो जो है सदर साहब का रवैया ये था और सदर साहब का रवैया उन्होंने ये बात भी कर ली, ये भी कर ली। और जब हमें उसकी डिलीवरी आई तो पता चला कि उनमें से 10% भी नहीं था। दूसरी बात रही कि भी मांगने की, हम मांगने की बात नहीं कर रहे। मैंने खुद इमरान खान साहब से कहा कि देखें, और ये अमेरिकन से भी ये कहा है मैंने, मेरी मेरी बात हुई है कि ये बताएं कि ये जो जिसको आप कोलेशन फंड कहते हैं $200 मिलियन, ये वो है जो पाकिस्तान ने अपने पास से खर्च किया है, गोलियां असला, और आपने ये वादा किया था, समझौता हमारे साथ किया था कि इसके जंग के जितने अखराजात पाकिस्तान को होंगे आप रीइंबर्स करेंगे। अकाउंटिंग में रीइंबर्स का मतलब यह है कि आप पहले खर्च कर ले फिर हम आपको रीइंबर्स करेंगे। इस मरतबा वो भी इमरान खान साहब ने सवाल नहीं उठाया, हालांकि उठाना चाहिए था कि आप हमारा हक वापस करें, वो हमारा हक है, वो पाकिस्तान की मनी है, अमेरिका की मनी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपके बिल जो है, मैंने आपसे माल खरीदा हो और मतलब के वादा किया हो और मुझे वो पे करने हो, आप वो भी जब ना मांगे तो उस रवैये को मैं